जय माँ। माता जी की प्रार्थना सभी इतनी सुंदर हैं कि वास्तव में चुनाव करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी मैं अंतिम समय तक सोच रहा होता हूँ कौन सी पढ़ूं। खैर, एक चीज जो स्पष्ट होती है माँ श्री अरविंद के योग में और उनके जब विशाल साहित्य में जब हम प्रवेश करते हैं कि साधना और साधन और साध्य, इन तीन चीज़ों का हमको पता होना चाहिए। बहुत बार हम साधन को साधना समझ लेते हैं। साधन क्या है? मेडिटेशन एक साधन है। साधन क्या है? भगवान के नाम का जप एक साधन है। साधन क्या है? कर्म एक साधन है। लेकिन ये साधना कैसे बनता है? ये जब इस साधन में अभिप्सा जुड़ती है तब ये साधना बनता है। कोई भी क्रिया, इवन मेडिटेशन हो या माता जी का काम कर रहे हैं, इस नाम से काम कर रहे हो हम लोग, रीडिंग कर रहे हो, ये सब बड़ी सुंदर चीज़ें हैं। लेकिन ये साधना कब बनती है? जब इनके साथ अभिप्सा जुड़ती है। अब अभिप्सा एक ऐसा शब्द है जिसकी बड़ा अद्भुत शब्द है। एक्चुअली अभिप्सा के लिए कोई पर्टिकुलर स्थान, कोई पर्टिकुलर समय, कोई पर्टिकुलर अवस्था ये नहीं है, क्योंकि अभिप्सा तो हर समय चल सकती है। आप बिल्कुल मरुस्थल में हो वहाँ भी आप अभिप्सा कर सकते हो, आप हिमालय की चोटी पर हो वहाँ अभिप्सा कर सकते हो, एयर कंडीशनर में बैठे हो तो अभिप्सा कर सकते हो, गर्मी में झुलस रहे हो तो आप अभिप्सा कर सकते हो, जेल में अभिप्सा कर सकते हो, आश्रम में अभिप्सा कर सकते हो। तो जब जहाँ अभिप्सा है वहाँ साधना है। फिर उस अभिप्सा को तीव्र करने के लिए कुछ उपाय हैं जिनको साधन हम कहते हैं, पर मूल चीज़ अभिप्सा है। अगर अभिप्सा नहीं है और केवल साधन है, साधन का हम उपयोग करें कि हम रोज दो घंटे बैठ जाते हैं मेडिटेशन के लिए, तो ये आवश्यक है। इसलिए माँ बार बार कहती हैं वन हैज़ टू बिकम कॉन्शियस कि हम क्या, हमारी अभिप्सा क्या है, क्या है वो जो भगवान हमारे द्वारा या हमारे अंदर करना चाहते हैं। ये पहली चीज जो आवश्यक है। और साधना भी अल्टीमेटली आवश्यक क्या चीज़ है? साध्य। कौन है जिनको हम सीख कर रहे हैं? तो भगवान के भी अनेकों अनेक लोगों के मन में प्रारंभ में धारणाएं होती हैं, बाद में भगवान सब धारणाएं हटा देते हैं, क्योंकि वह जो एकमात्र है तो आप ये है वो है ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उस एक विशाल अपार भी नहीं अपरंपार सत्य में समाहित हो जाती हैं। तो ये एक एक भाग है। दूसरा, आम तौर से साधनाओं का लक्ष्य क्या होता है? वो होता है भगवान से मिलना। और ये एक फंडामेंटल बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब तक हम भगवान से किसी ना किसी रूप में कोई कांटेक्ट नहीं होता, उनसे मिलन नहीं होता, तब तक आगे की चीज़ की बात करना उचित नहीं है। परंतु यहाँ पर अंत नहीं है। श्री अरविंद बार बार बताते हैं कि ये कर्म प्रधान योग है। तो दो प्रकार के योग होते हैं, एक है ज्ञान प्रधान योग। ज्ञान प्रधान योग वो उस एक को जानने के लिए, यहाँ जानना केवल बाहर से जानना नहीं है, जानना तभी होता है सच्चा जब बन जाते हैं। तो भगवान से एक होना उस दिशा में ज्ञान हमको ले जाता है। बाद में ये ज्ञान वहाँ से विस्फोट करके सारी सृष्टि में भगवान कैसे काम कर रहे हैं वहाँ ले जा सकता है और ले जाएगा अगर इस योग में जुड़ा हुआ है। पर एक होती है ज्ञान, ज्ञान की गति अंदर होती है, कर्म की गति बाहर होती है। कर्म में क्या होता है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रकट करना, तो कर्म अपने आप में आपको बाहर की ओर ले जाता है। तो दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है प्रेम, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं भगवान से तो ज्ञान अपनी एक विशालता में पहुंचता है। इसीलिए जब मृत्यु सावित्री को कहता है वेल एनी जेंडर आजकल, तो जब मृत्यु ऐसा कहता है, यम कहते हैं कहते हैं सावित्री को कि नो नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव, क्योंकि जब तुम उस एक को जान जाओगी तो ये जो तुम प्रेम की बात कर रही हो, सत्यवान और ये सब तुम्हारे अंदर समाप्त हो जाएगा। तो सावित्री का उत्तर है आई नो दैट नॉलेज इज ए वास्ट एम्ब्रेस, व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शेल्ट नो। तो ये देखिए इस योग में, क्योंकि प्रेम क्या है, वो केवल भगवान को अपने अंदर नहीं पाता है, प्रेम उस भगवान को सब में ले जाएगा, क्योंकि प्रेम की शक्ति यही है, प्रेम ने सारी सृष्टि को बांधा हुआ है। तो प्रेम से हट के भी एक ज्ञान योग है, ज्ञान तो आप कर सकते हो लेकिन उसमें आप सेल्फ रियलाइजेशन एनलाइटनमेंट जिसकी बात होती है, लेकिन इस योग में कलेक्टिव रियलाइजेशन की बात है, इसलिए सृष्टि पर धरती पर काम की बात है, इसलिए प्रेम के बिना वो ज्ञान अधूरा है। उसी प्रकार से प्रेम के बिना कर्म अधूरा है, क्योंकि प्रेम जब हम करते हैं भगवान से तो वो कर्म सेवा होती है, और जब भगवान से प्रेम किए बिना कर्म होता है तो वो अहंकार की बहुत, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं देखो मैं साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान का यंत्र हूँ, लेकिन ये मैं प्रेम में क्या होता है वो मामा बदल जाता है। तो ये एक प्रेम इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। और आज जो हम प्रार्थना पढ़ेंगे बड़ी सुंदर है, साधना में त्याग की बात होती है, और ये सच है कि जब तक हम अपनी निम्न प्रकृति का त्याग नहीं करते समुचित रूप से, तो खासकर ईगो सेल्फ का, डिजायर सेल्फ का, तो ये कहना कि भगवान मिल जाएंगे एक ठीक है, उनका कांटेक्ट हो सकता है भगवान को, कोई हम नियम कानून में नहीं बांध सकते, लेकिन वस्तुतः निम्न प्रकृति का त्याग, लेकिन ये त्याग होता है एक विशेष प्रयोजन से उसके रूपांतरण के लिए। मतलब त्याग ये दो प्रकार के हैं, एक है जब हम प्रकृति को त्याग देंगे उसमें हम नहीं आएंगे, दोबारा नहीं लौटेंगे, और दूसरा है कि हम उसमें लौटेंगे उस फील्ड में, लेकिन जब हम उस फील्ड में लौटेंगे उसके रूपांतरण के लिए लौटेंगे। मतलब इसको कुछ इस तरह से हम समझें, मैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी मुझे सिंपल लगती है, कि जब डॉक्टर जाता है तो वो 4.5 साल उसको डॉक्टरी करना अलाउड नहीं है, वो उसको बस सीखना है, वो अपने घर से दूर चला गया, सब चीज़ से दूर चला गया, लेकिन इसके बाद अगर वो बोले बस मैंने तो डॉक्टरी सीख ली, मैं मुझे बीमारी होगी तो मैं ठीक कर लूँगा, मेरे परिवार की मैं देखभाल कर लूँगा, तो लोग कहेंगे तुमने ये सब क्यों किया। तब उसके बाद वो वापस आता है, कहाँ आता है, वो अस्पताल में आता है जहाँ भयानक भयानक बीमारियाँ हैं, और उसमें आके उसको कार्य करना है। तो शेयरविंद का योग इस प्रकार का है कि पहला स्टेप है भगवान की प्राप्ति, उनसे संबंध, उनसे संपर्क, लेकिन उसके बाद जो स्टेप है वो है इस जगत में, इस बाहरी जीवन में, मोस्ट ऑर्डिनरी चेतना में, उसमें भी आके भगवान की किस को लाना, प्रकट करना। तो इस प्रार्थना को हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी सुंदर है। May 12th, 1914, ये जब, जैसा पहले भी बात हुई है कि जब हम देखते हैं कि माँ की प्रार्थनाएं अचानक बदलती हैं श्री अरविंद से मिलने के बाद, और उसमें वो और अधिक कर्म प्रवृत्त और कर्म प्रधान बनती जाती हैं। उन्होंने हर मार्ग से भगवान को ढूंढ लिया है, लेकिन अब वो मुड़ रही हैं भगवान के कर्म के प्रति। More and more it seems to me that we are in one of those periods of activity in which the fruit of past efforts becomes apparent. A period in which we act according to thy law in the measure in which it is the sovereign controller of our being without having even the leisure to become conscious of the law. तो हर एक हम देखते हैं रिलीजन में और नाना प्रकार के, हर कोई भगवान की नियम, तो भगवान का नियम क्या है, लॉ, तो इस लॉ के चलते तो युद्ध हो गए हैं, ना जाने कितने प्रकार के कांड हो गए हैं संसार में। भगवान की लॉ क्या है, लॉ मतलब उनका क्या नियम है, क्या वो चाहते हैं, क्या कानून है, क्या व्यवस्था है। तो जब भी हम इसको मेंटल इंटरप्रिटेशन में बांधते हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि भगवान नित नवीन रूप से, इसीलिए वो बाल रूप है श्री कृष्ण का, नित नवीन रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं हर किसी के अंदर, उसको उसके तैयारी के अनुसार, उसके भविष्य के अनुसार वो उसके मार्ग से ले जाते हैं। तो जब भी मनुष्य ने भगवान को, जो अनंत हैं, उनको किसी भी सीमित नियम में बांधने का प्रयास किया है, तो उसने एक रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन को जन्म दिया है, और वो रिलीजन फिर धीरे धीरे और कठोर होता गया, रिजिड होता गया, कि जो इसको नहीं मान रहा है वो काफिर है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान कोई एक पर्टिकुलर वे में, एक विशेष तरीके से, और ये हम लोग कि भारतीय उसमें तो कितनी कहानियां ऐसी, बधिक के घर में, बधिक के चेतना में भगवान आ जाते, चांडाल के जीवन में, तो कितने रूप में, क्योंकि हर किसी की चेतना अलग अलग स्टेज पर है। तो ये डिवाइन लॉ माँ बता रही है कि जब हम भगवान से जुड़ते जाते हैं तो हमारे जीवन में स्पॉन्टेनियसली भगवान की का जो की जो लॉ है, इसका एक ही शब्द है इसलिए मैं पहले ये क्लियर कर लूँ, धर्म। जो धर्म है वो स्वतः ही प्रकट होता है। धर्म को जब हम नियमों में बांधते हैं, नियम में बांधना होता है एक बहुत साधारण चेतना के लिए, शायद जरूरी है डिसिप्लिनिंग, बट डिसिप्लिनिंग ए लाइफ अकॉर्डिंग टू यम एंड नियम इज नॉट इक्विवेलेंट टू धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है जो प्रकट होता है अंदर में, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, भगवान से जुड़ता है, वैसे वैसे वो उसके अंदर में प्रकट होता है, उसको बताता है क्या करना है, कैसे करना है। ये नहीं कि पहले वो बताएगा फिर हम कर रहे हैं, भगवान डायरेक्ट एक्शन है, फिर वो आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ के होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। दिस मॉर्निंग पासिंग बाई अ रैपिड एक्सपीरियंस फ्रॉम डेप्थ टू डेप्थ, I was able once again, as always, to identify my consciousness with thine and to live no longer in aught but thee. Indeed, it was thou alone that was living. तो माँ बताती है कि हमेशा की तरह मैं ध्यानस्थ हुई और ध्यानस्थ होते ही मैंने सहज रूप से आपके साथ एक हो गई। देखिए माँ इतने सरल ढंग से लिख रही है, कितना कुछ इसके पीछे है। सहज समाधि, मैं बैठती हूँ और ध्यानस्थ हो जाती हूँ, और ध्यान में कैसा भगवान के साथ आइडेंटिफाई हो जाती हूँ, ये उनकी अवस्था है। तब कैन वी इवन इमेजिन, ये 1914 की बात है, काफ़ी पहले, इसके पहले कि उन्होंने आश्रम का और संसार का कार्यभार संभाला। लेकिन फिर उसके बाद जो बात है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनडीड इट वॉज दाउ एलोन दैट वॉज लिविंग, but immediately thy will pulled my consciousness towards the exterior, towards the work to be done, and thou saidst to me, be the instrument of which I have need. अब ये देखिए, यहां से श्री अरविंद योग की एक नई चीज प्रारंभ होती है। भगवान से मिलन, भगवान से विरह वेदना, भगवान से की ओर मुड़ना, भगवान से जुड़ना, एक होना, ये हम देखते हैं ट्रेडिशनल योग में अलग अलग ढंग से सबने किया है। लेकिन भगवान का आदेश क्या है? अब माता जी एक जगह इसको ऐसे कहती हैं, हमारे अंदर भगवान है ये जानना बहुत अच्छी बात है कि एक भाग है जो सदैव दिव्य है वास्तव में, तो बाहरी चेतना अंदर जाके जिसमें फंसा हुआ है वो स्व, उसके अंदर जाके एक हो सकता है, इट इज़ लाइक नोइंग कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। आप चले गए कश्मीर में, वहाँ आपने सुंदर बर्फ गिरी, आपने सुंदर सुंदर जगह देखी, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आप यहाँ जब आते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो आप या तो परेशान होगे या घर में एयर कंडीशन बैठ जाओगे। तो उस चीज़ को जो उन्होंने अनुभव किया है उसको अगर जीवन में उतारना है तो अपनी चेतना को मोस्ट एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो श्री अरविंद योग में होती है, जो कई लोग जो इसमें नहीं है वो नहीं समझ पाते। कई लोग हैं जिनकी चेतना को खींचा जाता है अंदर से बाहर की ओर, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। नॉर्मली तो चेतना को अंदर जाना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, ये अंदर से बाहर चेतना क्यों आ रही है और उसमें क्या होता है? तो वो ताकि आपको यंत्र बनना है। अब यंत्र कैसे बनेगा? अगर अर्जुन बोलेंगे नहीं मैं तो कुरुक्षेत्र में नहीं उतरूंगा, मुझे तो बस आपकी संगति चाहिए। यही देखिए बड़ी अद्भुत बात है, गोपियों का प्रेम अद्भुत है विदाउट डाउट, लेकिन जहाँ तक संसार है वहाँ कृष्ण और अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन हमेशा उनके पास। राम की भक्ति बहुतों ने की लेकिन हनुमान विलक्षण है। तो उसके लिए एक त्याग होता है जिसकी बात माँ कर रही हैं। बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच आई हैव नीड एंड इज नॉट दिस द लास्ट रिनंसिएशन। संसार का त्याग करना भगवान के लिए, इसकी बात हुई है। उस अद्भुत अवस्था का जो भगवान से मिलने के बाद होती है, उसका त्याग करना संसार में उनके काम के लिए, ये एक बिल्कुल विलक्षण बात है। ये श्री अरविंद के योग में ये एक नई चीज है जो बड़ी सुंदर है क्योंकि बार बार प्रश्न यही उठता है कि अगर वास्तव में संसार का कोई प्रयोजन ही नहीं है सिवाय इसके कि भगवान से मिलना हो, तो भगवान तो सदैव थे, ये सारा प्रपंच फिर क्यों हुआ? तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए यू हैव टू कम आउट, और उसकी बात वो कह रही हैं, टू रिनाउंस द स्वीट एंड प्योर जॉय ऑफ नो लॉन्गर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दी एंड मी द जॉय ऑफ नोइंग एट ईच मोमेंट नॉट ओनली विद द इंटेलेक्ट बट बाई एन इंटीग्रल एक्सपीरियंस दैट दाउ आर द यूनिक रियालिटी एंड दैट ऑल द रेस्ट इज बट अपियरेंस एंड इल्यूशन। ये इसमें एक नई चीज आती है कि आप संसार में उनके यंत्र बनते हो लेकिन उसमें रमते नहीं हो, आप संसार को वस्तुतः सत्य नहीं है, ये सत्य है क्योंकि वो भगवान का ही एक स्वप्न सत्य है, क्योंकि यहाँ भगवान का कार्य हो रहा है। और आगे बताती हैं, दैट द एक्सटीरियर बीइंग शुड बी द डोसाइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच डज नॉट इवन नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ द विल विच मूव्स इट इज नॉट डाउटफुल बट वाई मस्ट आई बी ऑलमोस्ट एंटायरली आइडेंटिफाइड विद द इंस्ट्रूमेंट एंड वाई शुड नॉट द आई बी एंटायरली मर्ज्ड इन दी एंड लिव दाई फुल एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। ये अवस्था है जिसका वर्णन है, और इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी है माता जी की, कि माँ जब वारंडे में गेस्ट हाउस के वॉक करती हैं तो माँ कहती हैं कई बार श्री अरविंद अंदर में बैठ के ही इज़ पुलिंग द सुपर माइंड, और श्री कृष्ण उनके साथ चलते थे, तो माँ को बड़ा आनंद आता था। फिर उन्होंने कहा क्या अद्भुत आनंद है। तो फिर कुछ समय बाद श्री अरविंद आ गए, श्री अरविंद चलने लगे, तो उन्हें कहा ये तो और भी अप्रतिम आनंद है। तो फिर माँ के हृदय में एक भाव उठा, ये सब क्या है, काम करना, डिवाइन वर्क, संसार, मनुष्य, इनका रूपांतरण। जैसे ही ये भाव उठा श्री अरविंद वैनिश्ड। तो फिर माँ भी, माँ का रिस्पॉन्स देखिए, कहती अच्छा कोई बात नहीं, आई विल वॉक विद द सुप्रीम। तो सुप्रीम के साथ वॉक करती है, ऑफकोर्स ही कम्स बैक टू वर्क। बहुत हेजिटेट किया था माँ ने काम में उतरने के पहले, और उसके बाद वो लिखती हैं फर्स्ट कृष्णा देन श्री अरविंदो देन द सुप्रीम। पर ये जो त्याग है माँ का, ये इस अवस्था में पहुँचने के बाद जहाँ सहज रूप से आप भगवान से जो उनके साथ मिल के जो आनंद होता है उसका त्याग करना, इस संसार के अचित अंधकार में उतरना, सबकी पीड़ा, सबके बोझ को अपने ऊपर लेना, उसको आत्मसात करना, सबके इम्परफेक्शन में अपने ही अंदर कोई इम्परफेक्शन को ढूंढना और उसको सही करना, ये एक अंतिम त्याग है जिसकी बात माता जी कर रही हैं। एक और प्रेयर है, उसका अंश हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर है माता जी की यात्रा की, और उसमें एक और अवस्था है जिससे हम गुजरते हैं, ये मई 19, 1914 की है। एक ऐसी अवस्था होती है जहां सब कुछ आपकी जो इंडिविजुअल फैकल्टीज हैं, कैपेसिटीज हैं, लगता है ये अब कुछ भी नहीं है। एक बड़ी सुंदर एक अवस्था होती है जब आप ज्ञानी हो, आप भक्त हो, ये कोई भी चीज़ आप अपने बारे में ना केवल बोल नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं कैफोरिज्म में, आई एम नॉट ए ज्ञानी, आई एम नॉट ए भक्त। तो कौन है? तो कहते हैं आई एम ए लीफ ड्रिवन बाय द ब्रेथ ऑफ द गॉड। हवा का झोंका नहीं, भगवान का झोंका, उसमें वो पत्ता है, जहां ले जाए वहां जा रहा है। तो माता जी की इस प्रार्थना में इसका एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे, देन वी विल रीड द प्रे फॉर टुडे। इवन इंस्ट्रूमेंट वो ऐसा बने वैसा बने, ये सब उनके अंदर से चला जाता है। ये मई 19, 1914 में है। And something else knows that thy will is for this instrument to be consecrated to the service of all. इवन इफ दैट शुड बी अपेरेंटली हार्मफुल टू इट्स ओन परफेक्शनिंग. क्योंकि जब आप सबकी सेवा, भगवान की सेवा सबके अंदर, तो स्वाभाविक है आप कॉन्टैक्ट में आओगे. लोग इस चीज को समझ नहीं पाते थे, माँ बीमार क्यों पड़ गई, ऐसे सोचते थे. एक बार पूछा अपने फेमस जो एक्टर हैं, उनके पिताजी जिन्होंने मधुशाला लिखी है, वो यहाँ आए थे दर्शन करने. दिनकर जी भी आते, इन सब तीनों कभी एक साथ आए थे, लेकिन इन्होंने दर्शन नहीं किए. भाग्य है अपना अपना, लेकिन क्यों? क्योंकि उस दिन माँ को जुकाम हो गया है. तो उन्होंने कहा, ये तो भगवान कहते हैं, ये लोग भगवान को जुकाम क्यों हुआ, और वो चले गए. ये नहीं कि माँ ने अपने ऊपर जो पीड़ा ली है, जिसके कारण वो आइडेंटिफाई होके संसार के साथ हार्मफुल क्यों है, वो परफेक्शनिंग, ये जनरली एडविसेबल नहीं है. माँ बताती हैं कि लोगों के साथ आइडेंटिफाई करना, उनकी कॉन्शियसनेस के अंदर प्रवेश कर जाना, उसको समझ पाना, ये सब एक योग की एक अवस्था में संभव होता है. बट इट इज़ नॉट समथिंग टू बी डन, क्योंकि फिर आप उनके अंदर की चीज़ें अपने अंदर चाहो ना चाहो लेते हो. इसलिए गुरु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आजकल तो बहुत ईजली ये शब्द हो गया है, क्योंकि वो गुरु तभी आप किसी को गाइड कर सकते हो जब आप किस उसके अंदर आइडेंटिफाइड हो. इसलिए श्रीमा शेरविंद के योग में देर इज नो गुरु, इट इज ओनली मदर एंड शेरविंदो. क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आप एक तो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पथ से चला है, और आप कहीं ना कहीं उसकी छाप आपके अंदर है, वो एक एंगल है, वो एंगल उस दूसरे व्यक्ति के अंदर चली आएगी. हो सकता है उसका पथ बहुत भिन्न हो. आप इवन स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी विवेकानंद गुरु के रूप में नहीं आते हैं, गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस है. एक बार उन्होंने प्रयास किया था, प्रयास नहीं किया, ऑटोमेटिकली किया, शुरू शुरू में मेडिटेट कर रहे थे किसी डिसाइपल के साथ. उन्होंने उस डिसाइपल को कहा, तुम अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो, और वो उसको अलग अलग एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए. अगले दिन जब वो मिलने गए तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको बहुत डांट लगाई. उन्हें कहा, तूने उसका पथ बदल दिया, उसका पथ कुछ और था. तो एक तो वो है, दूसरा आप जाने ना जाने बहुत कुछ है जो अपने अंदर ले लेते हो ऑटोमेटिकली. ये दोनों तरह का बड़ा भयंकर ये ट्रांजेक्शन होता है. तो माँ जो कह रही, हार्मफुल, माँ कितना बीमार पड़ गई थी, इसकी बात हुई है 1926 के पहले, जब सबकी बीमारी अपने अंदर वो ले रही थी कि मैं ही अपने अंदर सब कुछ कर दूंगी, शमन कर दूंगी. तो वो एक अवस्था है जिसमें वो कहती है कि मुझे ये काम दिया गया है, कि मुझे इंस्ट्रूमेंट बनना है. इंस्ट्रूमेंट बनना मतलब आप कि तलवार अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो रक्त रंजित होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा और कर्म प्रवृत्त होगा. कर्म प्रवृत्त होगा तो उसका घर्षण होगा, मिलन होगा, संघर्ष होगा अलग अलग चेतना के साथ, और उसके कारण उसके अंदर बहुत कुछ आएगा. तो यहाँ पे माँ बताती हैं कि लेकिन यह मुझे दिया गया है कि thy will is for this instrument to be consecrated to the service of all, even if that should be apparently harmful to its own perfectioning. यही चीज़ थी जिसके कारण माँ श्री अरविंद कहते हैं, हम दोनों के अंदर एक समय था जब ये प्रश्न उठा कि हम सबको साथ लेके चलें या हम अकेले पहले सिद्धि को प्राप्त कर लें, सुप्रामेंटल रूपांतरण कर लें. तो फिर माँ कहती हैं कि It was not a mental choice. The decision was spontaneous. That we have to carry everybody together. और वो carry everybody together किस हद तक जाता है? माँ बताती है कि जब बच्चे आए सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उनको भी she started carrying everybody together. और कहती है इसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी कठिनाई आ गई हैं आश्रम के जीवन में. पहले लोग, कई लोग जब देखते हैं उस समय का जीवन, जब बताते हैं, अब तो बहुत कम ऐसे बचे हैं, और बच्चों के आने के बाद जीवन बदल गया. माँ कहती है, यू डोंट एक्सपेक्ट दो लिटिल बेबीज टू डू साधना. वो तो घूमते थे बच्चे, हंसते थे, खेलते थे, सारे जो सीरियस सीरियस साधक थे, ध्यानस्थ, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी. कहती हैं, हम जो करना चाह रहे थे वो 30 वर्ष और धकेल दिया गया. लेकिन एक चीज़ जरूर है, कहती हैं कि वो समस्याएं जीवन की जो हमको आज नहीं तो कल लेनी थी, वो हमने आज ही ले ली, तो एक बार हम इससे जब निकल जाएंगे तो वो रियलाइजेशन ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो वो सबको ले करके चलना, ये कलेक्टिव योग में जो माता जी और श्री अरविंद ने किया है, और लोग प्रश्न करते हैं श्री अरविंद के सुप्रमेंटलाइजेशन, ये उन्होंने त्याग किया इसका, क्योंकि अगर वो चाहते तो सबसे कट ऑफ होके कर सकते थे, कोई कट ऑफ नहीं हुए। ये सब लोग बोलते ना एक कमरे में, हाँ लेकिन कॉन्स्टेंट पत्राचार था और अपनी आंतरिक चेतना से वो सारे संसार में कार्य कर रहे थे। तो ये इस प्रकार से उनका यंत्र बनना। और फिर बड़ी सुंदर सी बात है जो हमेशा हमको स्मरण रखनी चाहिए, समथिंग इन दिस बीइंग टेल्स दी ओ लॉर्ड, कोई चीज है मेरे अंदर जो आपसे कह रही है, आई नो नथिंग, आई एम नथिंग, आई कैन डू नथिंग, आई एम इन द डार्कनेस ऑफ इनकॉन्शियंस एंड समथिंग एल्स नोज दैट इट इज दाई सेल्फ एंड सो इज द सुप्रीम परफेक्शन। उसमें भी अंधकार में भी वो भगवान जानती कि मेरे साथ हैं, मैं ही हूँ वह सत्य जो परम सत्य है, वो कभी उनसे विस्मृत नहीं होता है। अब यहाँ पे लास्ट में जो पाठ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, साधना अधीरता से नहीं की जाती है, क्योंकि ये सारी अवस्थाओं से साधक गुजरता है। ये सोचना कि हम चार दिन में किंगडम ऑफ हेवन, देखा है मैंने लोग आते हैं शुरू शुरू में कभी कभी और बहुत एकदम मेडिटेशन में लग जाते हैं और मुझे ये एक्सपीरियंस हो जाए, वो बैठ के पास में कभी कभी हाथ ऐसे करके वैसे करके मेडिटेशन में, ठीक है वो एक स्टेज है, पर आज नहीं तो कल, क्योंकि ये तो समग्र हिमालय दर्शन है, हिमालय की एक चोटी पर तो आप चढ़ोगे नहीं, सारा हिमालय दर्शन है। तो जब नेचर के साथ अलग अलग भाग के साथ एनकाउंटर होता है तो क्या होता है, और माँ ये कह रही हैं व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, हाउ इज सच ए कंडीशन टू कम टू एन एंड, इज इट इनर्शिया, इज इट ट्रू पेशेंस, आई नो नॉट, बट विदाउट एनी हेस्ट और डिजायर आई लाई डाउन एट दाई फीट एंड वेट। कभी कभी कुछ नहीं हो रहा होता है आपके अंदर, वो कहते ना एक उत्साह उमंग, ये सारी चीजें डल पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि अरे कुछ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय क्या करना चाहिए, देखिए बड़ी सुंदर लाइन है एक मिल्टन की, दे टू सर्व हु वेट, प्रतीक्षा, कितनी सुंदर बात है, भगवान की प्रतीक्षा। शबरी ने कितने साल प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा किसमें प्रतीक्षा, उनके चरणों में गिर के, ये तो हम कर ही सकते हैं, इसको तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो माँ कहती है मैं केवल प्रतीक्षारत हूं, बिना किसी हेस्ट के प्रतीक्षा, ये नहीं प्रतीक्षा की अच्छा कल आप आ जाओगे, नहीं आए अरे ये क्या हो गया। एक जगह श्री अरविंद निरुद्धा को एक पत्र में ये लिखते हैं, जब निरुद्धा उनको लिखते हैं कि मेरे अंदर अवसाद सा हो रहा है, डिप्रेशन सा हो रहा है, तो श्री अरविंद कहते हैं कोई बात नहीं है, सबकी साधना में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, मैं स्वयं मेरी साधना में 6 महीने एक ऐसा समय आया था जब मैं कुछ भी नहीं करने को प्रवृत्ति हो रही थी। तो ठीक है आपके अंदर कुछ प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो उस समय अधीर नहीं होना है, प्रतीक्षा करनी है। जैसे रात, अगर वैदिक ऋषियों को हम पढ़ें उनकी ऋचाएं, तो वो कहते हैं 9-9 महीने हमने प्रतीक्षा की है कब सूर्योदय होगा, जिसके ऊपर लोग कहते हैं आर्कटिक ओशन से आए थे क्योंकि 9-10 महीने वहीं सूर्य नहीं होता है, कहते हैं 9 महीने 10 महीने कब सूर्य निकलेगा। तो ये प्रतीक्षा एक विशेष प्रयोजन से है, क्योंकि हमारे ऐसे भाग हैं जो जिनको आप जबरदस्ती नहीं कर, वो भाग में जब प्रकाश काम करता है तो पहले अंधकार जैसे निगलता रहता है, निगलता रहता है, निगलता रहता है, फिर धीरे धीरे वो अपने ही गर्भ से उसको प्रकट करने लगता है। तो वो फील्ड जो अंधकार में था उसके अंदर भी प्रकाश जगमगाने लगता है। वो स्टोरी ना चौथा वेद कैसे प्रकट हुआ, ऐसे ही प्रकट हुआ, एक असुर था, क्या नाम था उसका, हैग्रीव था शायद, उसने वेदों को संसार में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने वेदों को खा लिया। अब वेद तो उसने खा लिया कि भाई विलुप्त कर दूंगा मैं संसार से, पर वेद तो कोई किताब है नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर में जाके काम करना शुरू किया, अगले जीवन में वही वेद लिखता है, अगले जीवन में ही बिकम्स वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द वेद, चौथा वेद ऐसे ही प्रकट हुआ है, हाँ अथर्वेद। तो वो कहते हैं शिवजी से, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तीन वेद हैं जो अधिकृत हैं, सनत कुमार ये सारे, कहते हैं नहीं नहीं ये असुर था, इसने खा लिया था इस प्रयोजन से कि मैं वेद विहीन कर दूंगा, लेकिन अब वेद का तो असर है, आप अग्नि को ऐसे टच करो या वैसे टच करो आपका उसका असर तो होगा ही होगा। तो ये जो चीज़ है कि एक लंबे समय तक एक विस्मृति में चला जाता है व्यक्ति, ये भी एक एक इसका, खैर एक जीवन में आप ऐसे नहीं जाओगे, लेकिन एक पीरियड होता है जब नहीं आप कुछ कर पा रहे हो। हनुमान जी के जीवन में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चले गए थे और वो तीव्रता से गए थे, उनका शरीर मन प्राण तैयार नहीं है, तो उनसे सब विलुप्त हो जाता है, वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं मैं कहाँ करूँगा, जामवन जी आप लोग करिए कुछ, देखिए मैं नहीं कर सकता हूँ ये समुद्र को छलांग लगा के। अंगद कहते हैं मैं छलांग लगा सकता हूँ, शायद पहुँच जाऊँ, आ नहीं सकूँगा, पर ये कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तब उनको स्मरण दिलाया जाता है, क्योंकि साधना में ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब हम ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, आई एम नथिंग, आई कैन डू नथिंग, इनर्शिया। उस समय एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन को नहीं आने देना है, उस समय शरणागति, भगवान के चरणों में पढ़ के वेट करना। और ये बहुत तरह से आता है। एक और कहानी बताऊं, एक यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी जीवित हैं, तो बता रहे थे कि वो एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उनको कुछ हुई, अनबन हुई, जो भी हुई, तो उनको कहा गया कि इसमें अब तुम नहीं आओगे। बड़ा बुरा लगा उनको, पहले बुरा लगा, फिर क्या करूँ मैं, नहीं करूँ, उनके हिसाब से वो सही थे और किसी और के हिसाब से वो सही थे। अब ये तो चलता रहता है जीवन में कौन सही है कौन सही नहीं है ये तो भगवान जाने। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है अब अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं माँ श्री अरविंद को अच्छे से पढ़ता हूँ। आश्रमाइट तो वो थे, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और खूब पढ़ना शुरू किया। उनको बड़ा आनंद आने लगा, पहले भी पढ़ते लेकिन जितना आनंद उसको उनको पढ़ने में आने लगा अब, क्योंकि उनके पास समय ही समय था। फिर एक दिन अचानक एक वर्ष के बाद उनको बुलाया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या तुम नॉलेज में पढ़ाना चाहोगे क्योंकि वहाँ पर एक जगह है। अब देखिए, तो वहाँ चले गए। तो ये जीवन में अवसर आएंगे जब हमको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम प्रतीक्षारत रह सकते हैं, लेकिन प्रतीक्षारत किसकी, भगवान की, उनको समर्पित होके। इट डजेंट मैटर, लोग अधीर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्पेयर करने लगते हैं। यहाँ इस चीज का बहुत सुंदर वर्णन है। अब एक और काम, छोटा सा पाठ पढ़ेंगे, छोटा सा भाग, ये मेरी बड़ी फेवरेट प्रार्थनाओं में से है, वो है मई 23, 1914। भगवान के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स हैं और भगवान के अंदर ये सब समाहित हैं। आमतौर पे इन एस्पेक्ट्स को देवताओं का नाम दिया गया है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में ये इसके देवता हैं, वो उसके देवता हैं, और इस योग में हम देवताओं की अलग अलग ढंग से पूजा नहीं करते हैं। लेकिन क्या है? इसका अर्थ है कि वो समाप्त हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए, वे सब हैं, और वे सब, उनकी जो शक्तियां हैं भगवान में, वो जाके एक हो जाते हैं, और उसका आवाहन है। तो माता जी आवाहन कर रही हैं, और किसका आवाहन कर रही हैं, लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट, लेट मी रीड इट। इस प्रार्थना को जो मई 23, 1914 की है, जो मैंने एक समय नाम दिया था, वो था मेडिटेशन ऑन लव। मैंने बहुत तरह के मेडिटेशन सुने होंगे, मेडिटेशन ऑन लव। May 23rd, 1914। ओ लॉर्ड, thou of whom I would be constantly conscious and whom I would realize in the smallest cells of my being, thou whom I would know as myself and see manifested in all things. अब देखिए ये प्रेम विशालता में ले जा रहा है कि हर चीज में, छोटे से छोटे सेल्स में हर चीज का हमको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रेम है। भगवान का प्रेम ही, माँ एक जगह कहती हैं छोटी छोटी वस्तुओं को देखती हैं, कहती है अरे ये भगवान आपके प्रेम की शक्ति है जो इनकॉन्शियंट से ये चीज़ें बाहर निकाल के आई हैं। हमने कभी सीपी को ऐसे नहीं देखा होगा, या तारा नक्षत्र तो चलो फिर भी ठीक है, एक पत्थर जो पाषाण निकल के आया है और कभी कभी वो इतना सुंदर, भगवान का प्रेम है जो निश्चेतना से इसको निकाल करके लेके आया है। तो माँ बताती हैं कि छोटी छोटी चीज में मैं आपको देखती हूँ, दाओ हु आर द सोल रियलिटी, ये तो दाओ हु आर द सोल रियलिटी, ये सब मर्जों की दवा है। कोई भी चीज हो, घटन अघटन, अच्छी बुरी, जिसको हम शुभ या अशुभ बोलें, ये अल्टीमेट रेमेडी है, दाओ हु आर द सोल रियलिटी, द सोल रीजन एंड द सोल एम ऑफ एग्जिस्टेंस। Grant that my love for thee may go on increasing incessantly so that I may become all love. अब यहां से प्रेम का ध्यान शुरू होता है। कृष्ण प्रेम जब आए थे तो उन्होंने माता जी ने कहा मांगो कुछ भी तुम्हें मांगना है, तो भक्त थे, कहते मेरे गुरु की भक्ति में और सुदृढ़ हो। तुमने कहा पर तुम तो ऑलरेडी सुदृढ़ हो, बहुत भक्ति है तुम्हारे अंदर। नहीं, मैं और चाहता हूं। माँ इतना प्रसन्न होती है कि सब लोगों को बताती है कि ऐसे होना चाहिए डिसाइपल। और बचपन में मुझे याद है जब मैंने ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, तो ध्रुव इतनी कठिन तपस्या करते हैं, बाद में उनको विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव क्या मांगते हैं, कुछ ही मांग सकते हैं, विष्णु भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं। ध्रुव मांगते हैं, एक तो मांगते हैं पिता का वो सब, पर वो ध्रुव मांगते हैं आपके चरणों में मेरी अविचल आडिग भक्ति हो। इट हैड हिट मी सो हार्ड, मैंने कहा अब तो भगवान मिल गए, अब उनकी भक्ति। पर धीरे धीरे समझ आता है कि भक्ति, भगवान का प्रेम वो क्या है, ताकि कभी भी वो अंदर से हटे ना एक क्षण को भी। आई मे बिकम ऑल लव दाई वेरी लव एंड दैट बीइंग दाई लव आई मे यूनाइट इंटेग्रली विथ दी, प्रेम से पूरा ही पूरा मैं प्रेम से आच्छादित हो जाऊं, प्रेम की सुधा से भर जाऊं। मे दिस लव बिकम मोर एंड मोर इंटेंस कंप्लीट ल्यूमिनस पावरफुल। तो ये वो वाला प्रेम नहीं जो बस वो रो रहा है बिलख रहा है, ल्यूमिनस, ये वो वाला प्रेम नहीं जो ब्लाइंड है, जो ज्ञान युक्त है, प्रकाशवान है और साथ में सशक्त है। मे दिस लव बी एन इरेजिस्टिबल एलान टूवर्ड्स दी एन इनविंसिबल मीन्स टू मैनिफेस्ट दी। एक पूरी कन्वर्सेशन है जिसमें माँ बताती हैं रूपांतरण तो प्रेम ही करता है, तो फिर सुपर माइंड क्या करता है, सुपर माइंड तैयार करता है। सत्य की चेतना के बिना ये प्रेम अगर उतर जाए तो ये बहुत संभाल नहीं पाएगा। इसलिए माँ कहती हैं इसीलिए, क्योंकि इतना प्रचंड है, इतना तीव्र है कि इसको रिसीव करने के लिए मनुष्य को कुछ तैयारी करनी है। पर इफ यू आस्क मी, दैट इज हाउ इट बिगिंस, इफ यू आस्क मी, थॉट्स एंड एफोरिज्म्स वाली बुक में, द पावर दैट ट्रांसफॉर्म्स, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज विद लव। तो प्रेम के अंदर वो उस प्रेम को मैनिफेस्ट, तो माँ तो प्रेम को मैनिफेस्ट करने आई हैं, ग्रेस को मैनिफेस्ट करने आई हैं। हम लोग उनको न्यायाधीश बना देते हैं, गुरु बना देते हैं, और वो फिर हम उनको बहुत नीचे ले आते हैं, क्योंकि गुरु तो फिर निर्देश देंगे, आपने किया या नहीं किया इस पर डिपेंड करेगा, पर प्रेम तो आपको पकड़ के अपनी गोद में लेके चला जाएगा। और न्याय के रूप में अगर भगवान आ गए, सबसे पहले आपका हिसाब किताब होगा। इसलिए माँ कहती मैनिफेस्ट, और इसीलिए वो कर पाई जो कर पाई या कर रही हैं। उतादी की स्टोरी है ना, जब गुस्से उनका आता था, मूड्स आते थे, तो एक बार फेंक फूक के सारे श्वेत गुलाब जो माने उनको देती थी फेंक दी और चली गई, मैं जा रही हूँ पैक कर रही हूँ। और जाके वो गोलकुंड में पैकिंग कर रही हैं, वसुधा बहन गई पीछे पीछे, कहती जानना चाहोगी माँ ने क्या कहा तुम्हारे जाने के बाद, अच्छा बोल दो। पहले से काट दिया, फिर कहा माँ ने कहा इसको पता नहीं है ये मुझसे कितना प्रेम करती है, अब देखिए, प्रेम ही प्रेम को पहचान सकता है। बाहर से अगर वो देखे तो वो, लेकिन अगर देखा जाए तो बाहर से जब हम इस तरह के भी जो रिएक्शंस होते, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम होता है। उच्चतम प्रेम नहीं, लेकिन क्योंकि माँ उस प्रेम को एम्बॉडी करती हैं, वो हम सबको, ये आइडियल नहीं है ऐसा होना डिसाइपल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन माँ के प्रेम की बात है। अगर यहाँ पे लोग जब आश्रम में देखते हैं, साधकों को देखते हैं, तो दो चीज़ें देख सकते हैं, हम सबकी इम्परफेक्शन या डिवाइन मदर का प्रेम। क्योंकि इस तरह की, हर तरह की मनुष्यता को कौन है जो साथ में लेके चल सकता है, साधु असाधु सभी तथ्यों को। पूछा था किसी ने कि वो आश्रम में हम देखते हैं हर चीज़, हर तरह की चीज़, ये कैसे है संभव। तो रमन आश्रम के एक सन्यासी, उन्होंने कहा क्योंकि वो भगवान हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, डिवाइन लव है। गणिका जामिल ब्याद गीत गजाद खलतारी गना, ही कुड ठीक एंड कैरी एवरीथिंग एंड एवरीबडी। मे ऑल इन दिस बीइंग बिकम प्योर लव, प्रोफाउंड, डिसइंटरेस्टेड, डिवाइन, फ्रॉम द अनफेदमेबल डेप्थ टू द आउटर मोस्ट सब्सटेंस। एक एक चीज, मतलब बाहर का स्पर्श, गंध, सब कुछ प्रेम में बन जाए। मे द गॉड इन फॉर्म हु इज मैनिफेस्टिंग इन दिस एग्रीगेट बी होली मोल्डेड ऑफ दाई कंप्लीट एंड सबलाइम लव। यानी अपनी देह के बारे में कह रही है, गॉड इन दिस फॉर्म, इस देह का कण कण प्रेम से ही मोल्ड हो जाए, ऐसा बन जाए कि वो प्रेम को धारण कर सके, उसको प्रकट कर सके। क्योंकि प्रेम को प्रकट करना, धारण करना सबसे कठिन है। माँ कहती, यू नीड टू बी वेरी वाइड, वेरी स्ट्रांग। कमजोर व्यक्ति प्रेम को नहीं रिसीव कर सकता है, वो टूट जाएगा। और जो नैरो है वो भी नहीं रिसीव कर सकता है, बहुत विशालता, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। ओनली दोज हु आर वेरी वाइड एंड स्ट्रांग, माँ कहती है, कैन मैनिफेस्ट द वाइब्रेशन ऑफ लव। मे द गॉड इन फॉर्म हु इज मैनिफेस्टिंग इन दिस एग्रीगेट बी होली मोल्डेड ऑफ दाई कंप्लीट एंड सबलाइम लव, दैट लव विच इज एट वंस द सोर्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ ऑल नॉलेज। प्रेम से कैसे सारा ज्ञान, प्रेम का ज्ञान से क्या लेना देना है, क्योंकि ज्ञान एकत्व से आता है, और एकत्व के लिए सबसे उत्तम साधन प्रेम है। प्रेम सीधा हमको जोड़ देगा, एक बना देगा जिससे हम प्रेम करते हैं। तो अगर ज्ञान के लिए भी सबसे जो सशक्त माध्यम है, सबसे जो सरल, सहज और सुंदर और स्विफ्ट, शीघ्र, तो वो प्रेम है। लेकिन प्रेम आसान नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि प्रेम और ईगो एक साथ नहीं रहते। किसी ने माता जी से कहा, माँ मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो पता नहीं चलता अंग्रेजी भाषा में कि आई इंडिपेंडेंट, आई वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा। फिर वो एक मिस्टिक की बात बताती है, कहती है, तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तुम सेवा नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा। फिर उसने कहा, रिकनसाइल कैसे करेंगे इसको, नीड फॉर फ्रीडम को। एक और फ्रीडम है जिसकी नीड है, जिसके कारण हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, भाई मैं फ्री होना चाहता हूं, फिर आप कह रहे हो प्रेम के बिना, तो ये रिकनसाइल कैसे होगा। तो माँ बड़े सुंदर ढंग से बताती है, और कन्वर्सेशन मेरा बड़ा प्यारा स्वीट सा कन्वर्सेशन है। माँ कहती, देखो, फ्रीडम केवल भगवान से जुड़ने के बाद ही होती है। द ओनली ट्रू फ्रीडम इज यूनियन विद द लॉर्ड, और यूनियन विद द लॉर्ड का सबसे सशक्त माध्यम है प्रेम और सेवा। तो तुम फ्री होना चाहते हो ना, तो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दो अलग चीज है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग है। तुम अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो वो अपने आप में संभव नहीं है, क्योंकि संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, परस्परता है। लेकिन प्रेम आपको उस एक से जोड़ देगा, जब एक से जोड़ देगा, सेवा आपको उस एक से जोड़ देगी, तो आप फ्री हो जाओगे इन द रियल सेंस। फिर आप किसी और से बंधे नहीं हो, आप उस दिव्य से या दिव्य तत्व से बंधे हो, दिव्य उपस्थिति से, सब सारे सृष्टि से बंधे हो। तो फिर मैं बता आगे हमें, दैट लव विच इज एट वंस द सोर्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ ऑल नॉलेज, मे द थॉट बी क्लैरिफाइड, क्लासिफाइड, एनलाइटेंड, ट्रांसफॉर्म्ड बाय थाई लव। प्रेम के अंदर एक प्रकाश है जो बिल्कुल भिन्न रूप से चीजों को दिखाता है। जब माइंड या ज्ञान क्लासिफाई करता है तो लास्ट रिकंसिलिएशन में जाके संसार और जगत के बीच में वो खाई बन जाती है, लेकिन प्रेम उस खाई को भर देता है। तो जब प्रेम क्लैरिफाई करता है चीजों को, हर किसी के अंदर वो दिव्य उपस्थिति देगा क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन प्रेम का क्या होता है, किसी के अंदर प्रेम बड़ा प्रकट है, किसी के अंदर छुपा है, विलुप्त है, किसी के अंदर वो डिस्टॉर्टेड है, किसी के अंदर परवर्टेड है। तो वो एक अलग माँ डेथ को भी कहती हैं, तेरे अंदर भी है, तभी तो वो रूपांतरित होता है कि यू आर ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट क्लैरिफाइड क्लासिफाइड एनलाइटेंड ट्रांसफॉर्म बाय थाई लव। मे ऑल द फोर्सेज ऑफ माई लाइफ सोलली पेनेट्रेटेड एंड मोल्डेड बाई थाई लव बिकम इररेजिस्टिबल प्योरिटी एंड कॉन्स्टेंट एनर्जी पावर एंड रेक्टिट्यूड। प्रेम शुद्ध करता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी अशुद्धि कहाँ से आती है? सारे प्रेम की अशुद्धि, जीवन की किसी अशुद्धि को देखिए तो वो ईगो और डिजायर से आती है। बेसिकली डिजायर का रूट ईगो है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो आपके ईगो को इतना समाप्त कर सकता है कि आपके अंदर डिजायर का स्पंदन भी नहीं उठेगा, क्योंकि लव इज दैट पावर, इज द ग्रेट प्योरिफायर। आप प्रेम करोगे तो कैसे अपने बारे में सोच सकते हो? ज्ञानी तो सोचता है कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, ये मेरे मार्ग में बाधा है, इसको हटा दो या हट जाओ। लेकिन जो प्रेमी है, जो भगवान को प्रेम करता है, वो किससे भागेगा, कहाँ भागेगा? क्योंकि सब जगह वो भगवान को पाएगा। और इसलिए प्योरिटी, प्योरिटी जो प्रेम से आती है, प्रेम के मार्ग से प्योरिटी बड़ी अद्भुत ढंग से, इक्वालिटी प्रेम के मार्ग से आती है। और शेरविन कहते हैं इक्वालिटी की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, लास्ट आती है रेजिग्नेशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। कि भाई आपको पता है मेरे लिए उत्तम क्या है, ये सरेंडर विल ऑफ गॉड, ये प्रेम की अंतिम फ्लावर है। तो मां कहती है मेरे जीवन की सभी गतियां उस प्रेम से चलने लगे और बदल जाए, और मेरे अंदर वह पवित्रता आ जाए, इररेजिस्टिबल प्योरिटी, कॉन्स्टेंट एनर्जी, पावर एंड रेक्टिट्यूड। एनर्जी क्यों आती है? प्रेम से। प्रेम से ही एनर्जी आती है, क्योंकि प्रेम का विपरीत है सेपरेट ईगो। और अगर हमारी एनर्जी कट ऑफ हो गई है, मतलब हम गिर गए हैं तमस में, और ईगो इज द, इस तमस में गिरने के लिए जो होल है ना, ईगो का होल, जितने हम नैरो हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और जीवन में भी हम देखते हैं, माएँ जब बच्चे के लिए कुछ करती हैं, कितनी भी थकी होंगी, बच्चे के लिए देखो उनको एनर्जी कहाँ से आ जाती है। किसी को भी हम प्रेम करते हैं तो एक मानवीय जीवन में भी हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा हमको, मतलब यहाँ तक मैंने देखा है लोगों को, इवन कुत्ते से प्रेम करके उनके अंदर इस तरह का भाव आ गया कि भाई हम इस कुत्ते को असहाय नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई तुमको एडमिट होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी ये अवस्था आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई। बोले नहीं, जब तक ये कुत्ता है तब तक मैं नहीं मरूंगी, इसका मुझे विश्वास है। मैंने कहा तब ये डॉग नहीं, गॉड है। ये कुत्ते के कारण नहीं है, ये तुम्हारे प्रेम के कारण है। रोती, अब देखिए आप, और कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। तो प्रेम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो आज के समय में हम लोगों ने उसको डिनाई करके, उसको निगेट करके, और इसी कारण हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशनल बीमारी है प्रेम का भाव, जिसके कारण व्यक्ति भी सफ़र कर रहा है, समाज भी सफ़र कर रहा है, वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की ऊर्जा को दबा के लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, तो या तो वो एनालिटिकल थॉट है या फिर पैशन से अनब्रिडल्ड। प्रेम प्योरीफाई करता है, वो रिफाइन करेगा। प्रेम के अंदर सौंदर्य बोध है, प्रेम कभी क्रूडनेस की तरफ नहीं जा सकता। क्रूडनेस कहाँ से आती है? छीनना, झपटना। और प्रेम में क्या है? देने का भाव। अपने आपको रिफाइन कर देगा। आप केवल कल्पना कीजिए कि अगर आपको हाथों से कोई कर्म करना है छीनने के लिए, और वही कर्म देने के लिए, आपके हाथ कैसे चलेंगे? तो ये जो भाव होता है प्रेम का, ये रिफाइन करता है, प्योरीफाई करता है। मे दिस इंटरमीडियरी बीइंग, ओह क्या सुंदर बात बता रही मां, ये वाणी मां की, मे दिस इंटरमीडियरी बीइंग मेड वीक profit by its weakness टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट सेल्फ विद द एलिमेंट्स विच मे बी होल्ली मोल्डेड ऑफ थाई लव। ये महालक्ष्मी के संदर्भ में भी आती है कि वो हमारी कमजोरियों को, वीकनेसेस को, वो एक पुली बना के हमको खींच लेती है भगवान की। और वीकनेस क्या, वो अमल किरण ने जो बताया ना कि मैं, मेरे अंदर ये स्वभाव में था कि मैं कहीं भी देखता था सुंदर चेहरा गिर पड़ता था। एक दिन मैंने जगन माता माँ को देखा तो वहीं गिर पड़ा। अब वीकनेस यहाँ इस सेंस में है कि जो बड़े इगोइस्टिकली बहुत तन के रहते हैं, यहाँ वीकनेस उस सेंस में है। माँ वीकनेस उसकी बात नहीं कर रही कि मेरे चारित्रिक कमजोरी की बात नहीं कर रही है, माँ कह रही है कि वो जो तन के रहते हैं हर समय वो चला गया है मेरे अंदर से। मैं बड़ी रिजू हो गई हूँ, किसी को भी वो, कोई भी आता है उनके पास, कई बार लोग इसीलिए माँ की बात नहीं समझ पाते थे कि अभी वो गया था आपने उसको ऐसा कहा, फिर ये आपने उसको बदल क्यों दिया, चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि प्रेम के वश है वो। सी सींग एवरीथिंग विद दैट लव, आई ऑफ लव। तो माँ कहती हैं कि यह इससे सारी सृष्टि का कल्याण हो और सब कुछ मेरा मोल्ड हो जाए, क्योंकि प्रेम हमको रिजू बनाता है। प्रेम के लिए आप कोई भी त्याग कर सकते हो, जिसको प्रेम करते हो उसके लिए आप किसी सीमा तक जा सकते हो। तो ये हमको बाहर से जो देखते हैं वो लोग इसको कहते हैं वीकनेस, सेंटिमेंटैलिटी, बुद्धू बना देते हैं लोग तुमको। तो कहना चाहिए हाँ पता है, पर बुद्धू बनने के मार्ग से बुद्धि आती है। जो बहुत होशियार समझते अपने आप को, क्योंकि प्रेम की आपको ये ऑटोमेटिकली वो अंदर से आपको रिजू बना देता है। एंड मे दिस बॉडी बिकमिंग ए बर्निंग ब्रेजियर रेडिएट दाई डिवाइन इम्पर्सनल सबलाइम एंड काम लव थ्रू ऑल इट्स पोर्स। एक एक नक्षिक रोम रोम से आपका प्रेम प्रकट हो। और माँ यहां क्या कह रही हैं, काम लव, ये प्रेम आपको व्याकुल विहुल वो वाला प्रेम नहीं है, एक ऐसा प्रेम है जो आपकी हृदय की गहराई से उठ के आप्लावित कर देता है सारी सब कुछ। एक बड़ा सुंदर गाना है जिसमें ये कैप्चर किया गया ये भाव, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो सब जग जल हो जाए। एक एक रोम रोम से प्रेम प्रकट होने लगे, दृष्टि उन लोग बताते हैं माँ की दृष्टि बदल देती है, माँ का स्पर्श उनका स्मरण बदल सकता है हम लोगों को, क्योंकि वो साक्षात प्रेम है। मे दी ब्रेन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाई दाई लव, देखिए रूपांतरण कितना सुंदर है ये। फाइनली मे दाई लव ओवरफ्लो इनंडेट पेनेट्रेट ट्रांसफिगर रीजनरेट एनिमेट एवरीथिंग विद द पावर स्प्लेंडर स्वीटनेस एंड फोर्स विच आर इट्स वेरी नेचर। प्रेम की यही बहता है, फैलता है, विकीर्ण होता है। इसीलिए लोग कई बार पूछते हैं, मैं से भी पूछा है, दूसरों से पूछते हैं, भाई आश्रम आप क्यों, आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। मैंने कहा देखो मुझे इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पता है, पर यहाँ माँ के प्रेम की लीला हुई है, हमारे लिए वो पर्याप्त है। यहाँ उनकी प्रेम की लीला हुई है। अब वृंदावन के बारे में क्या है वृंदावन में, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण ने वहाँ प्रेम की लीला हुई है। वो जो प्रेम की जहाँ लीला होती है वहाँ कण कण में प्रेम विद्यमान होता है। प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो हर चीज में छाप पड़ी है उनकी, उनके चरण पड़े हैं, उन्होंने हाथ से इस चीज को छुआ होगा, देखा होगा। एक किसी के घर को मैं जानता हूँ, वो उन्होंने बड़ी सुंदर एक स्टोरी बताई। उनका घर बालकनी रोड से आई थिंक दो रोड्स के बाद है, तो उन्होंने बताया स्वीट सी स्टोरी की सबसे अच्छी बात ये होती थी कि मेरे घर को माँ बालकनी में जब आती थी तो देख सकती थी, तो उनको इस बात से बड़ा आनंदित। हुतादी की कहानी तो हम जानते ही हैं कि माँ ने उनको एक पर्टिकुलर विंडो को खुला रखने को कहा था, बिकॉज उस विंडो से वो भी देख सकती हैं और माँ भी देख सकती हैं। तो जिस घर पे माँ की दृष्टि पड़ी हो उसके अंदर प्रेम तो कण कण में बसा होगा। पर्सनल नोट पे मुझे तो यही खुशी होती, लोगों ने कहा डेजिरे में शुरू में घर जा लेते समय कि भाई इसमें तो भूत रहता है, मैंने कहा भूत को छोड़ो, माता जी वहां गई हुई हैं, भूत का देखेंगे, भूत को माँ के चरण पड़े हैं उस घर के अंदर, वो नहीं जो नया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर पड़े हैं माँ के चरण, ये मुझे मालूम है, दो तीन बार गई हैं, और क्या चाहिए आपको। भूत राक्षस असुर सब स्वीकार है। तो ये जो प्रेम की जो छाप होती है वो अद्भुत होती है, वो कभी नहीं मिटती है। माँ की लीला तो अभी शुरू हुई है, वृंदावन को देखो अभी तक चल रहा है। तो ये आश्रम इंस्टीट्यूशन तो बदलता रहता है, लेकिन ये जो स्थान है जहाँ श्री अरविंद का तप प्रसाद और माता जी का प्रेम की बाढ़ आई हुई है, इसको तो ये तो अमिट है। तो माँ की ये प्रार्थना है, इन दाई लव इज पीस, शांति चाहिए, भगवान से प्रेम करो, उनके प्रेम का अंश धारण। प्रेम अपने आप, क्योंकि अशांति कहाँ से आती है, मुझे ये चाहिए। और प्रेम क्या करता है, परफेक्ट रेमेडी, ट्रीटमेंट, डिजीज इगोइटिस, उसी से डिसहारमोनी आ रही। जितनी डिसहारमोनी है देखा जाए, डिसहारमोनी डिसऑर्डर आपके ईगो के कारण आ रहे हैं। ईगो ही करती ना, किसी चीज में अधिकता ले आएगी किसी चीज को। लव इज द रेमेडी, हम लोग प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, आई विश डिस्पेंसरी मिलता नहीं है। टेक दाउ डिवाइन मदर्स लव, इलाज के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो अलग। सो माँ बता रही हैं, इन दाई लव इज पीस, इन दाई लव इज जॉय, इन दाई लव इज द सॉवरेन लीवर ऑफ वर्क फॉर दाई सर्विस। बिना प्रेम के सेवा सेवा नहीं होती, और उसका लक्षण होता है कि जो भगवान की सेवा कर रहा है और यदि उसमें प्रेम है तो प्रफुल्लित रहेगा। यदि सेवा आपको टायर कर रही है, अहंकार बढ़ा रही है, मैं सेवा कर रहा हूं, अरे तुम डिस्टर्ब मत करो, मतलब ये सेवा नहीं है, कुछ और है। और माँ की जब सेवा सेवा जिसमें प्रेम लगा हुआ है, वो आपको आनंदित करेगी और वो आनंद स्पॉन्टेनियसली फैलेगा। Thy love is vaster than the universe and more enduring than the ages. वो प्रेम की लीला यहां हुई है और हो रही है। Enduring than the ages, युग चले जाएंगे किंतु वह स्थान जहां भगवान का सर्वोच्च प्रेम प्रकट हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। इट इज इनफिनिट एंड इटर्नल, इट इज दाई सेल्फ एंड इट इज दाई सेल्फ दैट आई वुड बी एंड दैट आई एम, सिंस सच इज दाई लॉ एंड सच दाई विल। इस पंक्ति को फिर से पढ़ के रुकेंगे। मे द ब्रेन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय thy लव, ताकि सारे विचार हमारे स्वीटनेस आनंद भगवान के माधुर्य से भरे हुए हों। सुहृदय, फाइनली मे thy लव ओवरफ्लो, इनंडेट, पेनिट्रेट, Transfigure, regenerate, animate everything with the power, splendor, sweetness and force which are its very nature. In thy love is peace. In thy love is joy. In thy love is the sovereign lever of work for thy service. कितना अच्छा हो जिस दिन हम ये कह सकें, कोई पूछे भगवान आप आश्रम में क्या क्या करते हैं, हम ये सब बताने के बजाय हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम ये कहें कि हम प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं। ये तो बस एक एक्सप्रेशन है, कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इन दाई लव इज पीस, इन दाई लव इज जॉय, इन दाई लव इज द सॉवरेन लीवर ऑफ वर्क फॉर दाई सर्वेटर। Thy love is vaster than the universe and more enduring than the ages. It is infinite and eternal. It is thyself. Jai Maa.